हरे कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है, अर्थात माह में दो एकादशी। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी इसी एकादशी व्रत के महात्म्य को अत्यंत सरल एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं व विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के बाद जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मलावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जया एकादशी, ये माघ महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, इसे जया एकादशी कहते हैं। भगवान से इसके महत्व के बारे में जब युधिष्ठिर ने पूछा भविष्योत्तर पुराण में, तो भगवान ने इसके महत्व को बताया। एक बड़ी सुंदर कथा जो देवलोकों में हुई, स्वर्ग लोक में वर्णन किया कि इंद्र जो स्वर्ग लोक के राजा हैं, उनका एक बहुत सुंदर वन है नंदन कानन वन, और वैसे वहाँ बहुत से गंधर्व हैं, भरी अप्सराएं हैं। एक समय इंद्र नंदन कानन वन में, वहाँ पर उन्होंने आयोजन किया संगीत का, नृत्य का। वैसे जब देवलोकों में ये आयोजन होते हैं, साधारणतया वहाँ भगवान का गुणगान होता है। ऐसा नहीं है कि देवलोकों में केवल वे लोग भोग में लगे रहते हैं। देवलोकों में सतत कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का आयोजन होता रहता है। तो देवलोकों में ये आयोजन हो रहा था। बहुत से गंधर्व थे, जिनमें एक था जिसका नाम था माल्यवान, और उसका आकर्षण था एक अन्य स्त्री के प्रति जो वहाँ पर उपस्थित थी, जिसका नाम था पुष्पवंती। दोनों गंधर्व योनि में थे, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण था। गंधर्वों का कार्य होता है गान करना, इसीलिए कभी कभी इस जगत में भी हम लोग जब कोई बहुत अच्छा गाते हैं तो उनको गंधर्व की पदवी दे देते हैं। तो गंधर्वों का कार्य है बहुत मधुर सुंदर गायन करना। वैसे ये गायन भी होना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो वे लोग गायन कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित थे, तो उनका ध्यान एक दूसरे के प्रति जा रहा था। उनके हृदय में जो भावनाएं थीं, वो बार बार उनके शरीर से, उनके हाव भाव से, उनके आचरण से प्रकट हो रही थीं। और जिस कारण से कभी कभी गाते समय ताल इत्यादि ये ठीक नहीं रहता था या कभी कभी गाना रुक भी जाता था। जैसे ही इंद्र ने ये देखा तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि इंद्र ने सोचा कि ये अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं, वासनाओं के द्वारा प्रभावित होकर इन्होंने कर्तव्य को त्याग दिया। तो इसीलिए इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि आप ये बड़ा ही गलत कार्य कर रहे हो, आप दोनों पिशाच योनि में चले जाओ। अब दोनों हिमालय में आ गए, पिशाच योनि में रहने लगे। बहुत समय बीत गया तो फिर एक दिन आपस में चर्चा करने लगे कि ये कितना समय हो गया है हमें इस पिशाच योनि में रहते रहते, क्या लाभ है, हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रयास किया। एक समय ऐसा हुआ कि जया एकादशी के दिवस पर उनको पता चला कि एक तिथि है, इस दिन पर कुछ पालन करने से कोई लाभ हो सकता है। तो उन्होंने उस दिन कुछ खाया पिया नहीं, वो उपवास किया, कोई उन्होंने अन्य कार्य नहीं किए, गलत कार्य नहीं किए, अधर्म पाप नहीं किया, और उस दिन बड़ी कड़ाई से पालन किया। भगवान की योजना से दोनों को ऐसा लाभ मिला कि इस एकादशी का पालन करने मात्र से वे पिशाच योनि से मुक्त हो गए, पुनः इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, जिनको मैंने श्राप दिया था ये मेरे श्राप से मुक्त कैसे हो गए। तो इंद्र ने उनसे पूछा और उस समय उन्होंने बताया कि भगवान की योजना से जब हमने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति की और फिर हमने इस जया एकादशी का पालन किया तो श्री वासुदेव जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारा, हमें स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ, हम फिर से यहाँ पर आए। और उस समय इंद्र ने उनकी आराधना की। इंद्र कहते हैं कि जो लोग भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं और जो लोग इस जया एकादशी का पालन करते हैं वो हम देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। तो ऐसा कहकर इंद्र ने उनकी आराधना की। ये बहुत सुंदर वर्णन है कि किस तरह भगवान की भक्ति एक व्यक्ति को बड़े निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जा सकती है। और कौन सा ऊंचा स्तर? भगवान की भक्ति उनको ऐसे स्तर तक ले जा सकती है जहां वो देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाते हैं। लेकिन इस जगत में जब तक वो बने रहते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें भगवान से भी दूर रखती है और इस जगत में कष्ट में डालती है। भगवत गीता में अर्जुन ने यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया। अर्जुन ने कहा कि लोग पाप में क्यों लगते हैं, वे जानते हैं, बुद्धि है, सब कुछ है, फिर भी पाप में क्यों लग जाते हैं, ऐसी क्या चीज है। अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि वो उन्हें प्रयुक्त कर देती है पाप में। और भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान कहते हैं कि इस जगत में पाप में प्रयुक्त करने के लिए एक ही कारण है और वो है काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्वह महाशनो महापाप विद्येनम इह बैरिनम। भगवान कहते हैं कि इस जगत में हमारे जो शत्रु हैं वो है काम वासना। जैसे हमने इस कथा में देखा कि माल्यवान को पुष्पवंती के प्रति काम वासना से आकर्षित होकर अपने कर्तव्य को नहीं कर पाया, ऐसे ही इस जगत में हम सब का बंधन का कारण ये काम वासना है। काम वासना का अर्थ क्या है? काम वासना का अर्थ है हृदय में किसी चीज को पाने की बड़ी तीव्र इच्छा, और वो इच्छा जब वासना में बदल जाए, चाहे वो धन के लिए हो, स्त्री के लिए हो, किसी पद के लिए हो, तो ये काम वासनाएं हैं। विशेष करके जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला आकर्षण है ये हमें इस जगत में बांध कर रखता है। ये इस जगत में सारे पापों को प्रकट करता है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान ने बताया कि ये काम है जो ये सारे पापों की जड़ है। और हम इस जगत में अब देखते भी हैं कैसे ये जगत में सब जगह फैल रहा है। शास्त्रों में वर्णन है शूर्पनखा का, रामायण में वर्णन आता है। शूर्पनखा ये रामचंद्र जी की ओर आकर्षित हो गई। हम यहाँ इस कथा में देख रहे हैं कि आकर्षण हुआ उन दोनों को और पिशाच योनि में जाना पड़ा। तो शूर्पनखा आकर्षित हो गई रामचंद्र जी के प्रति। वन में देखा रामचंद्र जी बहुत सुंदर हैं। शूर्पनखा ने सोचा कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। आ गई, प्रस्ताव रखा विवाह का। रामचंद्र जी ने इनकार कर दिया, कहा कि मेरे साथ में तो मेरी पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। तो शूर्पनखा ने लक्ष्मण को देखा तो फिर आकर्षित हो गई, लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। जब आगे चलकर लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए तो शूर्पनखा रावण के पास जाकर उसकी काम वासना को जागृत करने लगी। रावण को जाकर उसने ये नहीं कहा कि मुझे रामचंद्र जी से विवाह करना था, मुझे लक्ष्मण से विवाह करना था। उसने जाकर कहा उनकी बहुत सुंदर स्त्री है उनके पास। रावण के हृदय की काम वासना को वो बढ़ा रही थी ताकि रावण काम वासना से ग्रसित होकर सीता देवी का हरण कर ले, और ऐसा ही हुआ। इसी तरह आज के समाज में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारी काम वासना को बहुत बढ़ाती हैं, जिसके कारण हम लोग ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो शास्त्र में निंदित हैं, समाज में निंदित हैं, कानून की दृष्टि से गलत हैं, फिर भी उन कार्यों को हम कर बैठते हैं। और इसका उदाहरण हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा। कुछ वर्षों पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। एक बहुत नव युवती के साथ बलात्कार किया गया और ऐसे उसके साथ कृत्य किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बहुत लोगों ने उसकी चर्चा की, और स्वाभाविक है क्योंकि वो जो छोटी लड़की थी वो जीना चाहती थी। हमने सुना है कि वो जब उसके माता पिता उससे मिलने गए तो वो उनसे कह रही थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसे मरना पड़ा। क्या गलती थी उसकी? क्या उसकी गलती ये थी कि उसने एक स्त्री के रूप लिया था? क्या उसकी गलती ये थी कि उसने भारत में जन्म लिया था? उसकी गलती ये थी कि वो एक ऐसे समाज में रह रही थी जहां चारों ओर इस वासनाओं को बढ़ाया जा रहा है, इन वासनाओं को फैलाया जा रहा है, और ऐसे समाज में रहकर उसको अपने प्राण देने पड़े। जो लड़की जीना चाहती थी उसको मरना पड़ा। तो इसीलिए ये जो वातावरण इस समाज में अब फैलाया जा रहा है, जिसके द्वारा ऐसी भावनाओं को भड़काया जाता है जहां हम हर एक दूसरे की संपत्ति का भोग करने का प्रयास करते हैं, ये भावनाएं सारे समाज में उत्पात लाती हैं। एक तरफ हम लोग देखते हैं रामायण में कि रावण की मानसिकता थी, रावण भगवान की संपत्ति का उपभोग करना चाहता था। रावण ने सीता देवी का हरण कर लिया ये सोचकर कि ये मेरे भोग के लिए है। लेकिन दूसरी ओर एक मानसिकता हम देखते हैं भरत की। भरत जो उसको राज्य मिला, लेकिन क्योंकि भगवान का है वो उनको वापस देना चाहता था। भरत युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था राज्य देने के लिए। बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं राज्य को लेने के लिए, लेकिन यहां एक युद्ध था राज्य को देने के लिए। तो ये दो मानसिकताएं हैं, रावण की और भरत की। रावण की मानसिकता है मैं भोगी हूं, ईश्वरोहम अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। ये रावण की मानसिकता है जहां हर चीज को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भरत की मानसिकता क्या है कि ये सारी चीजें भगवान की हैं। जो राज्य उसको मिला भी वो भी भगवान का है, अर्थात जो हमें चीजें मिले ये भगवान की सेवा के लिए हैं। इस मानसिकता को बढ़ाना ये मनुष्य जीवन का उपयोग है या उसका लक्ष्य है। तो जब हम इन काम वासनाओं को ऐसे फैलाते हैं तो क्या होता है, जैसे उन लोगों ने माल्यवन और पुष्पवंती, इन्होंने काम वासना के चलते अपने कर्तव्य को त्याग दिया, पिशाच योनि लेनी पड़ी। इसी तरह जब हम सब काम वासना के चलते अपने सही कर्तव्य को त्याग देते हैं, कर्तव्य क्या है हमारा, हमारा कर्तव्य निश्चित परिवार का पालन करना, समाज में एक अच्छी सुव्यवस्था लाना, ये तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति करना भी हमारा कर्तव्य है। जिस कर्तव्य को हम भूले हुए हैं, समाज में रहते हुए परिवार का पालन करना, समाज में अच्छे तरह से रहना, राष्ट्र की सेवा करना, निश्चित ये अच्छे कार्य हैं और ये होने चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ इनसे एक श्रेष्ठ कार्य और वो है भगवान की सेवा करना, उसको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए अपने कर्तव्यों को करते हुए भगवान की भक्ति को भी करना चाहिए, ये मनुष्य जीवन में आवश्यक है। लेकिन जब हम ऐसी भावनाओं को फैलाते हैं जैसी शूर्पणखा ने फैलाई, जैसी रावण ने फैलाई, और जैसा हमने जो दिल्ली के कांड के विषय में चर्चा की तो उसमें उन भावनाओं को देखा, तो ये भावनाएं हमें हमारे उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता और जिस कारण वे इस समाज में उत्पात लाता है। एकादशी का व्रत मदद करता है कि किस तरह हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें। जैसे जब हम भोजन कम करते हैं, उपवास करते हैं, कथा को सुनते हैं, भगवान के नामों को लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारी इंद्रियों से उन वासनाओं को निकाल देती हैं, हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर देती हैं। हमारे कान केवल मधुर संगीत सुनने के लिए नहीं बने हैं, हमारे कान बने हैं कृष्ण की कथा के लिए। हमारी आँखें ये गलत चीज़ें देखने के लिए नहीं बनी हैं, हमारी आँखें बनी हैं श्री कृष्ण के सुंदर रूप के लिए। तो जब इन इंद्रियों में ये वासनाएं भर जाती हैं तो व्यक्ति सारे जगत को अपने भोग की वस्तु देखने लगता है, जैसे रावण सारी चीज़ों को अपने भोग की वस्तु देखता था। लेकिन जब इन उपवासों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम इन इंद्रियों से इन वासनाओं को निकाल देते हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें हमें भगवान की सेवा के लिए दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए ये जो एकादशी है इसका जब हम पालन करते हैं, जया एकादशी, तो जब जय मतलब कब आपकी जय हो सकती है, जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करें। जैसे हम लोग बहुत बार इस गाने को सुन चुके हैं, हम बचपन से इसको सुनते आए हैं, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो मन को वश में करें, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हमको इतनी शक्ति देना मन विजय करें। तो मन विजय करें मतलब कैसे मन पर, और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों का गुणगान करने से पहले हम अपना गुणगान करें, इसका अर्थ ये है कि भगवान से ये प्रार्थना है कि हे भगवान हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम मन विजय करें, क्योंकि ये मन है जो हमें दूर ले जाता है भगवान से, ये मन है जो कष्ट में डालता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मन के साथ साथ ये इंद्रियों के संघर्ष में व्यक्ति डूबा हुआ है, इसीलिए कष्ट में है। हमारा सारा कष्ट इसीलिए है। अगर हम इस जीवन में सुखी होना चाहते हैं, समाज में सुव्यवस्था लाना चाहते हैं, हमें एकादशी व्रत पालन करने चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम अपने मन को विजय कर सकें। केवल रोज स्कूल में सुबह गाने से कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति दीजिए कि मन विजय हो, मन विजय नहीं होगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इंद्रियों को नियमित करना पड़ेगा, और इंद्रियों को नियमित करने के लिए सरल मार्ग है भगवान की भक्ति करना। क्योंकि इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली हैं, इनको वेग कहा गया है। जब इंद्रियों के वेग आते हैं तो बहुत तेज होते हैं, तो इनको रोकने का क्या उपाय है, बड़ा सरल उपाय, हम भगवान की भक्ति करें। क्योंकि अन्यथा वेग नहीं रुक पाते। हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि कितने बड़े ऋषि हैं और वो बड़ी तपस्या कर रहे हैं, अपने बल पर वो प्रयास कर रहे हैं अपने इंद्रियों के वेग को रोकने का, और कई कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या कर ली, फिर भी जब मेनका उनके समक्ष आई वो अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर उदाहरण है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर भगवान के एक महान भक्त थे, उनका जन्म यवन कुल में हुआ था, लेकिन बहुत विश्वास और श्रद्धा से भगवान के नाम को लिया करते थे, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे विश्वामित्र के साथ हुआ था। जब वो एक अकेले बैठे हुए भगवान के नाम का जप कर रहे थे तो एक एक वैश्या वहां पर आई, जिसको किसी ने भेजा था कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। तो वैश्या आई और उसने कहा, मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। उस समय हरिदास ठाकुर बड़े युवक थे और सामने एक युवती आई, रात का समय, अंधकार, अकेलापन, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे थे, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। विश्वामित्र मुनि की तरह उनका मेनका के साथ उनको संग नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए उस वेश्या को भक्त बना दिया। ये भक्ति का महत्व है, ये भक्ति की शक्ति है। इसीलिए हमारे जीवन में आवश्यक है कि हम अगर इस समाज में एक अच्छा वातावरण चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आगे चलकर कभी भी किसी लड़की के साथ या किसी अन्य बच्चों के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ समाज में दुर्व्यवहार हो, तो हमें इस भावना को फैलाना चाहिए, लोगों में ये जागरूकता लानी चाहिए कि वो जागरूक हो जाएं कि क्या क्या ज़रूरत है हमारे लिए इस समाज में। इस समय समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर किसी चीज़ की कमी भगवान ने नहीं रखी है, न खाने की कमी है न किसी अन्य चीज़ की। अगर कमी है तो इस ज्ञान की कि कैसे मनुष्य जीवन में रहना चाहिए, इस भक्ति के ज्ञान की बहुत कमी है, जिसको हमें प्रसार करना चाहिए। हमें बताना चाहिए लोगों को कि शूर्पनखा से दूर रहें। इस समाज में हम देखते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी वासनाओं को बढ़ाती हैं, तो वो शूर्पनखा की तरह हैं, हमें उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारी मानसिकता हमें रावण की तरह नहीं रखनी चाहिए, जो हर चीज़ को अपनी भोग की वस्तु मानता है। हमें हमारी मानसिकता भरत की रखनी चाहिए कि सारी चीज़ें ये भगवान की दी हुई हैं। शास्त्र कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच्याम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम। शास्त्र कहता है कि जो भी चीज़ें हैं सब कुछ भगवान की हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, और फिर उसमें से भगवान ने हमारे लिए कुछ चीज़ें हमें दी हैं, हमें उनका ही उपयोग करना चाहिए, दूसरे की चीज़ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस समाज में हम लोग देखते हैं झगड़े किस लिए होते हैं, युद्ध किस लिए होते हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं एक दूसरे की संपत्ति छीनने के लिए। तो जब हम इस बात को, इस सिद्धांत को समझ लें कि सब कुछ भगवान का है, हमें जितना दिया है हमें उसका उतना ही उपयोग करना है, हमारे जीवन में युद्ध नहीं होंगे। ये समाज में बहुत जो आजकल अराजकता फैली हुई है वो अराजकता नहीं फैलेगी। आतंकवाद को नाश हो सकता है, हम लोग आतंकवाद का नाश करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बड़ा धन खर्चा किया जाता है, लेकिन अगर इस भावना को फैलाया जाए, इन चीज़ों को समझाया जाए कि लोगों के हृदय से एक दूसरे की चीज़ों को छीनने की भावना चली जाए, तो अपने आप आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को समाप्त किया जाता है भाईचारे से। आतंकवादियों के हृदय में जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। तो आतंकवाद को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ये ज्ञान को फैलाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये ज्ञान देना चाहिए कि हम सब भगवान की संतानें हैं। अलग अलग स्थान पर, अलग अलग धर्म में, अलग अलग समाज में रहकर अंततः भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कहीं कोई गलती नहीं है। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम ये धर्म के सिद्धांतों को फैलाएं, हम हरेक को अपना मानें, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानें, ये सारे लोगों को, सारे मनुष्यों को हम अपने भाई बहन की तरह मानें, तब जाकर समाज में सही दृष्टि से सही भावनाओं की स्थापना होगी, सही चीज़ें समाज में फैलेंगी। अन्यथा समाज में क्या होगा, जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। इसीलिए ये एकादशी का व्रत जब हम लोग करते हैं तो एकादशी व्रत से हमारी इंद्रियां वश में आती हैं। इंद्रियां जब वश में आती हैं तब हम भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, और जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं तब हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और उस भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम समाज में सुव्यवस्था ला सकते हैं। इसीलिए अगर हमें समाज से आतंक को समाप्त करना है, अपराधों को समाप्त करना है, अराजकता को समाप्त करना है, तो इस भक्ति के वातावरण को इतना बढ़ा देना चाहिए जिससे सभी लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करना सीखें और ऐसी भावनाओं से परे आएं जहां पर हम एक दूसरे के लिए पिशाच योनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसी भावनाओं से दूर आएंगे तब सही दृष्टि में हम अपनी जय कर सकेंगे और दूसरों की भी जय कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।